ہاں جی
لوکی میں جو مرتے ہیں
ہاں
لوکی میں جو مرتے ہیں وہ جان میں نہیں چلتے ہیں لیکن ایک آدمی چلتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو وہ کھانا لے جا کر دیتے ہیں پیسہ کی جی تم لوگ کھا لو اچھا ہے کیا
لوکی میں جو مرتے ہیں لوکی دنیا میں ہماری تو الوکک دنیا ہو گئی کیا ہماری جو گیان کی دنیا ہے گیان میں چلنے والے برہمنوں کی دنیا ہے برہما کے بچوں کی دنیا ہے وہ تو الوکک دنیا ہو گئی لیکن جنہوں نے اس گیان کو نہیں لیا ہے وہ تو لوکک دنیا کے ہیں وہ لوکک دنیا میں جب مرتے ہیں تو استھول موت مرتے ہیں یا بے حد کی موت مرتے ہیں ایک ہوتا ہے جیتے جی مرنا کیا زندہ ہیں لیکن زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے دیہ اہنکار کو مار دیں جس دیہ اہنکار سے کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار پانچ وکار پیدا ہوتے ہیں مانے اپنی اہنکاری ورتیوں کو خلاص کر دیں آتم کی استھتی میں استھت ہو جائیں ایسا مرنا ایشور باپ سکھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں الوکک مرتیو اور دنیا والوں کی ہوتی ہے لوکک مرتیو ارتھات دیہ کی مرتیو ہوتی ہے جو دیہ مرتیو کو پاتی ہے تو آتما تو زندہ رہتی ہے کہ نہیں آتما تو رہتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیہ مرتیو کو پراپت ہوئی یہ بات ان کی بدھی میں نہیں بیٹھتی ان کی بدھی میں بیٹھتا ہے جو شخصیت تھی دیکھنے میں آتی تھی وہ یہاں سے چھوڑ کر کے دوسرے لوک میں چلی گئی تو اس کو بھوجن دیتے ہیں کہیں بھوک ہی نہ رہ جائے ترپت ہو جائے شرادھ کھلاتے ہیں ترپتی کے لیے تو وہ تو استھول بات ہو گئی واستو میں یادگار یہاں کی ہے جبکہ بھگوان باپ کلیوگ کے انت میں اس سرشتی پر آ کر کے ہم براہمنوں کو الوکک جیون دیتے ہیں اس الوکک جیون میں پرشارتھی جیون میں پرشارتھ کرتے کرتے جب ہم بے حد کی مرتیو کو پراپت ہوتے ہیں دے ابھیمان سے موت تو ایسی مرتیو جب ہمیں ملتی ہے تو ہم کو جو براہمنوں کا یاد کا بھوجن ہے وہ ملتا ہے جیسے کہ برہما کمار کماریوں میں بھی براہمن تو ہے نا بل اونچی کوٹ کے براہمن نہیں ہیں براہمنوں کی نوکریاں ہوتی ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے تو وہ نیچی کوٹ کے براہمن ہیں ان براہمنوں کا جو مکھیا برہما ہے اس کی پوجا نہیں ہوتی ہے مندر نہیں بنتے ہیں مورتیاں نہیں بنتی ہیں تو نیچی کوٹی کا ہوا نا اس لیے وہ براہمن جو ہیں جب شریر چھوڑتے ہیں موسٹلی تو سوکشم شریر دھارن کرتے ہیں وہ سوکشم شریر دھارن کرنے والوں کو ڈڈیا رہتی ہے دیہ کی چیزوں کی دیہ کے سمبندھیوں کی کھانے پینے کی اچھا رہتی ہے تو ان کو وہ بھوگ لگاتے ہیں واستو میں وہ بھی غلط ہے اصلی بات کیا ہے کہ جب پرشارتھ کرتے کرتے ہماری آتما سمپن اسٹیج میں پہنچے تو ایسی سمپن اسٹیج میں پہنچی ہوئی جو آتمائیں ہیں دیو آتمائیں کہی جاتی ہیں ان دیو آتماؤں کو یاد کا بھوجن ملتا ہے کیا جو ہم ایشوری یاد کرتے ہیں وہ ایشوری یاد کا بھوجن آٹومیٹک ان کو ملتا رہتا ہے جیسے بھکتی مارگ میں یگ کرتے ہیں تو دیوتاؤں کو کیا کرتے ہیں آہوتی دیتے ہیں کہ یہ دیوتاؤں کو یہ گھی وغیرہ ملے تو ایسے ہی یہ یہاں کی باتیں ہیں باقی کوئی استھول بھوجن کھانے والا ہوتا ہی نہیں ہے شرادھ کھلاتے ہیں برہمن کھا جاتے ہیں یا کوئی आत्मा आकर के खाएगी, ब्राह्मण खा जाते। ये भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की परंपराएं हैं जो ज्ञान मार्ग में दूसरे रूप में चलती है। वास्तव में इसकी दरकार नहीं है। दरकार किस बात की है? आत्मा का जो भोजन है, ईश्वरीय याद की खुराक, उस खुराक में खुद भी मजबूत रहना और दूसरी आत्माओं को भी वो खुराक देना। ईश्वर की स्मृति वो ही असली हमारी खुराक है। ईश्वर का ज्ञान वो ही हमारी असली बरसात या ज्ञान का जल है। जितना ज्ञान हम लेंगे उतना हमारी ईश्वर की याद हमको पचेगी। भोजन पचाने के लिए क्या करते हैं, क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। पानी में ताकत नहीं होती है, लेकिन खाया हुआ भोजन अगर पानी नहीं पिएंगे तो अंदर गर्मी पैदा कर देगा। तो पानी की भी जरूरत है और खुराक की भी जरूरत है। तो जो जो संपन्न स्टेज को जाते हैं, जीते जी मरते हैं, उनको याद का भोजन चाहिए। क्योंकि याद शरीर रहते रहते जितना ईश्वर को याद कर लेंगे वो याद ही काम आती है। शरीर छूटने के बाद पुरुषार्थ नहीं होता। और
सर 1968 मुरली में बाबा ने बाप ने बोला है तुम बच्चों को खुशी खुशी में शरीर छोड़ना है। ये कब?
संगम युग है, मौजों का युग। क्या? रावण का युग है, रोने का युग। रावण रुलाता है तो रोने का ही युग होगा ना। और भगवान बाप तो राम नाम है उसका, रमण कराता है। योगी लोग जिसकी स्मृति में रमण करते हैं, खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो है राम। रम्यते योगिनो यस्मिन्ते राम। भगवान राम उसका काम है हंसाना, खुश करना। तो जहां खुशी रहेगी वहां संगम युग में मौज ही मौज है। कब? जब भगवान का ज्ञान धारण करेंगे। अज्ञान में रहेंगे तो रोएंगे, क्योंकि अज्ञान आता है बाहर की दुनिया से और ज्ञान आता है ईश्वर से। तो हमारी बुद्धि में अगर ज्ञान टपकता रहे हर समय तो हम खुश मौज में रहेंगे। हमारे मौजों की शूटिंग होती रहेगी, रिहर्सल होती रहेगी। ये 84 जन्मों की रिहर्सल का टाइम चल रहा है। हमारी आत्मा की जो 84 जन्म है उन 84 जन्मों में अगर खुश मौज में रहना हो तो क्या करना है? ईश्वर की याद में रहना है, ईश्वर के ज्ञान में मस्त रहना है। ये मौजों का युग है, ये रोने का युग नहीं। अगर हम रोएंगे तो रावण का वर्षा ले रहे हैं। रावण का वर्षा लेंगे तो फिर द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होगा। द्वैत द्वापर, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो से चार, चार से आठ। दुनिया में मत मतांतर बढ़ते ही जाते हैं। उस द्वापर कलयुगी रावण की दुनिया में हम जाकर के दुखी होते रहेंगे। इसलिए अभी भगवान के बच्चे बनने के बाद रोने की शूटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे भगवान बाप को पहचाना ही नहीं। या परसेंटेज में पहचाना है, बाप को पूरा पहचाना नहीं है। समाधान हुआ? अरे हाँ ना, कुछ तो करो तो फिर आगे बताए। हैं? हाँ
रमा
बच्चा कम
है,
बाबा का एक बच्चा कम और बाबा का एक बच्चा अधिक
है। दुनिया में जो भी आत्मा रूपी बच्चे हैं, मनुष्य आत्माओं की बात हो रही है, पशु पक्षियों की बात नहीं हो रही, कीड़े मकोड़ों की। तो दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा रूपी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। तो परमपिता परमात्मा शिव वो आत्मा अलग, क्योंकि वो तो बच्चों की लिस्ट में है ही नहीं, है या नहीं है? वो तो सबका आत्माओं का बाप है, बच्चा बच्चा नहीं, और उसका एक ही संबंध है आत्माओं के साथ। वो बाप है और हम सब बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे हैं, जिस बिंदु की यादगार टिकुलिया बिंदु लगाते हैं, टीका लगाते हैं इस यादगार में कि हमें इस स्मृति में टिकना चाहिए कि हम आत्मा हैं। तो हम उसके बच्चे हैं, तो वो तो हुआ बाप, हम सब हुए बच्चे। अब वो बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो कैसे प्रत्यक्ष होता है? ये आत्मा भी नहीं दिखाई पड़ती और आत्माओं का बाप भी दिखाई नहीं पड़ता, फिर पहचान में कैसे आएगा? जब वो आएगा ऊपर से नीचे सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए, दुखी से सुखी बनाने के लिए, तो प्रवेश करता है। क्या? जिसमें भी प्रवेश करेगा वो माता का रूप हो गया, दुनिया की बड़े से बड़ी मां, इसका नाम रखा गया शास्त्रों में ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़े से बड़ी, मां माने मां। अरे भगवान बाप ही जिसका आधार लेगा सृष्टि रचने के लिए, तो वो मां हुई ना। दुनिया में भी बाप होता है तो बाल बच्चे पैदा करने के लिए, सृष्टि पैदा करने के लिए किसका आधार लेता है? जिसका आधार लेता है वो मां हो जाती है। तो ऐसे ही वो ही परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो जिसका आधार लेता है, जिस तन में प्रवेश करता है, उसका नाम क्या रखता है? ब्रह्मा। तो वो तो अम्मा हो गई है, और बाकी सब क्या हो गए? है बच्चे हो गए। तो जो बाकी सब बच्चे हो गए वो बाप हो गया। उन बच्चों में से जो आत्मा रूपी बच्चे हैं उनमें से एक को अम्मा बना दिया, उसको बच्चा कहेंगे अम्मा कहेंगे? है अम्मा ही कहेंगे। तो वो तो हो गई अम्मा। तो जितने भी बच्चे हैं उनमें से एक कम हो गया कि नहीं? बात समझ में आ गई? किसने पूछा था? आया समझ में? हाँ। और
बाबा ने मुरली में बोला लास्ट में हम लोग जब माउंट अबू जाएगा उधर भी हमारा परीक्षा होगा, फिर बाबा बोले क्या उधर किधर भेज देंगे, उधर परीक्षा होगा फिर हमको बुला कर लेके आएंगे। इसका मतलब
हमको बुला के लेके आएंगे माना दुनिया से?
हाँ, लड़ाई मैदान में हमको छोड़ देंगे।
ऐसा है, भक्ति मार्ग में एक कहावत है, तप कर राज, राज कर नरका। तपस्या करते हैं तो राजा बनते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो राजा बनेंगे, और राजा जब बनते हैं तो अहंकार में आते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? राजा को नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? नरक मिलेगा। तो तप कर राज, राज कर नरका, ये हिसाब है। ये कहाँ का हिसाब है, कहाँ इसका बीजारोपण होता है, इस हिसाब की शुरुआत कहाँ से होती है? जब भगवान इस दुनिया में आता है, जब आता है तो उस दुनिया में आकर तुम हम बच्चों को बताता है कि बच्चे तुम जो ब्राह्मण हो उन ब्राह्मणों का ओरिजिन स्थान जहां से ब्राह्मणों की सृष्टि की शुरुआत हुई वो है माउंट आबू, जहां ब्रह्मा का कार्य चलता है, वहां से ब्राह्मण शुरू हुए। वो ब्राह्मण जब संपन्न तपस्या की स्टेज पर पहुंचते हैं तो अपनों को क्या समझते हैं? बिंदु आत्मा। ऐसी बिंदु बिंदु आत्माएं जो बनते जावेंगी वो वहां इकट्ठे होते जावेंगे। सृष्टि के अंतकाल में, महाविनाश के चाकाल में। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा पहाड़ है दुनिया में जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, बहुत गहरा पत्थर है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़े भूकंप आवेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा। अंतिम चर्म विनाश की सीमा को छोड़कर तब तो सारी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन जो और भूकंप आते रहेंगे, ये एटम बम बने हैं वो फटते रहेंगे, शहर शहर में जमीन हिलती रहेगी, लेकिन वहां बाल बांका नहीं होगा। दुनिया को इस बात का पता नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों की जो संगठन रूपी सृष्टि है वो एक प्रकार से इस दुनिया के बीच में भगवान का धाम बन जाता है। भगवान के धाम को कहेंगे साकार परम धाम। क्या कहेंगे? साकार। निराकार तो वो है जहां से आत्मा इस सृष्टि पर आ रही है, आती है लेकिन जाती जाती नहीं है, सबको जाने का रास्ता भूल जाता है। तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है घट रही है? क्यों बढ़ रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। मनुष्य की हिस्ट्री इस बात को जानती है कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? अरे आत्माएं लगातार आ रही है, वापस जाने का किसी को रास्ता नहीं मालूम, इसलिए आबादी बढ़ रही है। तो वो हुआ निराकारी धाम, और इस सृष्टि पर भी होता है भगवान का धाम माउंट आबू, जहां से ब्रह्मा की सृष्टि ब्राह्मण निकलते हैं। वो ब्राह्मण ये नहीं कहेंगे कि जो भी माउंट आबू से निकले वो सब फर्स्ट क्लास है, नहीं, कोई फर्स्ट क्लास कोई थर्ड क्लास, नौकुरी के ब्राह्मण हैं। दुनिया में नौ बड़े बड़े धर्म हैं, जो नौ धर्म भगवान को कुछ न कुछ मानते हैं। आखिरी धर्म है नास्तिक धर्म, वो भगवान को नहीं मानता, तो नहीं मानता उसको प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो जो नौ धर्म हैं वो ब्राह्मणों का रूप है। उन नौ ब्राह्मण ऋषियों से ये नौ ब्राह्मणों के गोत्र पैदा होते हैं। वो नौ प्रकार के ब्राह्मण जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, उनमें से अव्वल नंबर के जो ब्राह्मण हैं, जो मुसलमानों में भी आज तक गायन है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह जब आया तो उसने दीन माने धर्म, अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया। तो पहली कुरी के जो ब्राह्मण हैं सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले, और किसी ग्रह को फॉलो करने वाले नहीं है, वो ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले जो सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं वो अपने को बिंदु समझेंगे, उस सूर्य की अपने को किरण समझेंगे। हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, और दूसरों को भी किस रूप में देखेंगे? आत्मिक रूप में देखेंगे। ऐसी जिनकी अभ्यास पक्की हुई पड़ी है ऐसी आत्माएं वहां इकट्ठी होती जाएंगी। इकट्ठे होते होते उनकी संख्या हो जाएगी 9 लाख। कितनी? कहावत है भक्ति मार्ग में, 9 लाख सितारे आसमान में हैं, जिनमें से आधे रात में चमकते हैं और आधे दिन में हैं। जो दिन के सितारे हैं वो अपनी रोशनी को सूर्य में मर्ज कर देते हैं, دیکھنے میں آتے ہیں है? وہ نہیں دیکھنے میں آتے ہیں, وہ اپنی روشنی کو سوریہ باپ میں مرج کر دیتے ہیں. جیسے کہ اچھے براہمن پریوار کا کوئی بچہ ہوگا تو وہ ماں باپ کو مانتا دے گا یا اپنے کو سنسار میں مانتا بڑھائے گا؟ ماں باپ کو مانتا دینے کی پریاس کرے گا. تو ایسے گیان سوری کے جو بچے ہیں جو اپنے استتو کو نہیں سامنے رکھتے ہیں سنسار کے, لیکن بھگوان باپ کو پرتکش کرنے کے پروشارتھ میں رہتے ہیں, ایسے بچے وہاں جا کر اکٹھے ہوں گے. کتنے سنکھیا کتنی بتائی؟ 900,000 ستارے. وہ ستارے ہیں آسمان کے جڑ ستارے, اور یہ ستارے ہیں دھرتی کے چیتنیہ ستارے. یہ دھرتی کے چیتنیہ ستارے سب بھگوان باپ کے گھر میں اکٹھے ہوں گے. ساکار دھام, ساکار ہوتے ہوئے بھی نراکاری اسٹیج والوں کا دھام. وہ نراکار اسٹیج پراپت کرنے والوں میں جن کی اسٹیج سمپن سمجھی جاوے گی ان کو کہا جائے گا باہر کی دنیا میں جا کر کے دوسرے دھرم والوں کی سیوا کرو. کیا جو دوسرے دھرم والے ابراہیم کو اسلامی اپنا باپ سمجھتے ہیں, کرائسٹ کو کرسچین اپنا باپ سمجھتے ہیں, تو وہ تو بھگوان کو جلدی نہیں پہچانیں گے وہ جلدی نہیں پہچانتے. تو ان کو بھی سندیش تو ملنا ہے بھگوان کا, وہ بھی گاڈ فادر کو تو مانتے ہیں. تو ان کو سندیش دینے کے لیے وہ پاورفل آتمائیں دنیا میں بھیجی جائیں گی. ایشوری سیوا کرو جا کر کے, وہ جا کر کے سیوا داری بنیں گے. سیوا کرنے سے دوسروں کے سنگ کے رنگ میں آنا پڑے گا کہ نہیں آنا پڑے گا؟ سنگ کے رنگ میں آنا پڑے گا تو ان کا پربھاؤ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پربھاؤ پڑے گا تو کمزور بنیں گے یا پاورفل بنیں گے؟ کمزور بنتے جاتے ہیں. جب کمزور ہو جاتے ہیں تو دکھی ہو جاتے ہیں. بھگوان باپ پھر ان کو بلاتا ہے, کیا آؤ اپنی آتما روپی بیٹری کو چارج کر کے جاؤ. یہ آتما روپی بیٹری ہے, یہ موٹر ہے جو باہر کی دنیا میں جتنا چلے گی تو ڈسچارج ہوگی. بھگوان کے دھام میں آ کر کے پھر سے چارج ہو جاتی ہے. تو یہ آنا اور جانا چلتا ہی رہے گا جب تک دنیا کا وناش ہوئے. اور
سیگر ایڈوانس نام پڑھاتی ہوں.
بیسک نام اس لیے پڑھا کہ جو پڑھائی ہوتی ہے دنیا میں بھی, تو ایک ہوتی ہے بیسک معنی شروعات کی پڑھائی. جو شروعات کی پڑھائی پڑھے بغیر اوپر کی پڑھائی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. کوئی کہے ہم کاکھا گانا نہیں پڑھیں گے, آئی ای نہیں پڑھیں گے, اے بی سی ڈی نہیں پڑھیں گے, باقی اوپر کی ساری پڑھائی پڑھیں گے, تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جو پڑھائی اما بھی گھر بیٹھ کر کے تھوڑی بہت پڑھا سکتی ہے وہ پڑھائی کہی جاتی ہے بیسک پڑھائی. اور جو پڑھائی گھر میں ماں بیٹھ کر کے نہیں پڑھا سکتی ہے, اوپر کالج میں اسکول میں ہی جانا پڑے, مہاودیالے میں ہی جانا پڑے, اس کو کہتے ہیں اونچی پڑھائی, ایڈوانس پڑھائی. تو ایشوری گیان میں بھی دو ورگ ہیں, ایک بیسک پڑھائی جو بی کے میں پڑھائی جاتی ہے. وہ بی کے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گود کے بچے ہیں, ششو ہیں, وہ اما کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ باپ کو بھی پہچانتے ہیں؟ اما کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو وہ کہیں گے اپن کو بی کے برہما کمار. ارے بھیا تم برہما کمار بڑی اما کمار اپن کو کہتے ہو, تمہارا باپ بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بیچارے جانتے ہی نہیں. جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ پھر بھی اپنے کو کیا کہیں گے؟ برہما کمار. لیکن جو جانکار ہیں باپ کے, وہ کہیں گے نہیں, ہم پرجا پتا برہما کمار, ہمارے ماں اور باپ دونوں ہی سستی پر موجود ہیں, ہم دونوں کے بچے ہیں. دنیا میں کوئی بچہ یہ کہے کہ ہماری اما کا نام ہمیں معلوم ہے, اما کمار ہیں, ہم اما کے بارے میں جانتے ہیں, باپ کے بارے میں ہم نہیں جانتے, تو دنیا اچھا سمجھے گی ہے؟ کیا سمجھے گی؟ نیچی نظر سے دیکھے گی یا اونچی نظر سے دیکھے گی؟ نیچی نظر سے دیکھے.
اچھا بابا,
اچھا
گروار کا دن بیسک میں جو بھوگ لگاتے ہیں کس کو لگاتے ہیں؟ کس کو لگاتے ہیں گروار دن بھوگ؟
بتا دیا آپ کو کہ جو بیسک میں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتوں کو چھوڑ دو. جیسے ہم نے دنیا والے بھکتوں کی باتوں کو چھوڑ دیا, کیونکہ بھکتی مارگ میں جو بھی کرم کرتے ہیں وہ سب اندھ شردھا پوروک کرتے ہیں, بنا جانے بنا پہچانے پوجا کرتے رہتے ہیں, ان کو ہی ہم نے چھوڑ دیا. ان چھوٹے بچوں کو بھی چھوڑ دو, کائے کے لیے پیچھے پڑے.
کیا کیا پاٹ بجاتے ہیں؟
ہاں کون بول رہا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ذرا. 84 جن میں کیا کیا پاٹ بجاتے ہیں؟
کون سا پاٹ تو بجاتے ہیں؟
آپ نے بٹھی کب کی؟ آپ نے بٹھی کر لی کب؟ آپ نے بٹھی کر لی گیان کی؟ جو بٹھی یہاں 7 دن کرائی جاتی ہے 9 دن, وہ کر لی مئی میں کر لی کر لی نا؟ تو جب بٹھی کر لی تو آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آتما اگر شریشٹھ آتما ہے تو پہلے دیو آتما کا پارٹ بجاتی ہے. دیو آتما ہوتے ہیں ستیوگ تریتا میں, پھر دیہ کے سکھ بھوگتے بھوگتے دیوتاؤں کی شکتی چھین ہو جاتی ہے, آتما کی بیٹری تھوڑی ڈم ہو گئی, تو دواپر یوگ سے 8 کلائیں رہ جاتی ہیں آتما کی, تو وہاں منشیوں کا پارٹ بجاتے ہیں, منن چنتن منتھن کرتے ہیں, شاستر لکھتے ہیں. اور جب کلیوگ شروع ہوتا ہے تو آتما کی کلائیں بالکل ڈم ہو جاتی, تب راکشسی پارٹ شروع ہوتا ہے تمو پردھان ہونے پر. دنیا کی ہر چیز 4 اوستھاؤں سے پسار ہوتی ہے, ستو پردھان, ستو سامان, رجو اور تمو. تو آتما بھی 4 پرکار کے پارٹ بجاتی ہے. وشیش ستیگ میں ستو پردھان بہت سکھی, 16 کلا سمپورن سکھ, تریتا میں ستو سامان رہ جاتا ہے, ستو پردھانتا میں نہیں رہتا, اس لیے تھوڑا سکھ ہوتا ہے لیکن دکھ نہیں ہوتا. جب دواپر شروع ہوتا ہے تو دویت وادی یوگ شروع ہونے کے کارن دو دو متیں دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں, دو دو دھرم شروع ہو جاتے ہیں, دویت وادی راجی شروع ہو جاتے ہیں, تو دکھ کی شروعات ہوتی ہے, اتی کا دکھ نہیں ہوتا ہے. اور جب کلیوگ ہوتا ہے تو تمو پردھانتا آ جاتی ہے, جو دواپر یوگ کی رجو پردھانتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی, تب بہت مارا ماری لڑائیاں دنیا میں چلتی رہتی ہے, تب شودر بن جاتا ہے. تو جو سمپن آتمائیں ہیں وہ 4 اسٹیج میں اسپشٹ روپ میں پارٹ بجاتی ہیں, ستیگ میں دیوتائیں ہیں, تریتا میں چھتری ہے, دواپر میں ویشیہ ہے, اور کلیوگ میں شودر بن جاتے ہیں. ان شودروں کو پھر سے گیان دے کر بھگوان برہما کا پتر برہمن بناتا ہے, ان برہمنوں کو پھر گہرا گیان دیا جاتا ہے, جو گیتا میں لکھا ہے, گیتا میں لکھا ہے نا, گویات گوہی ترم گیانم گوہی تے گوہی راج سناتا ہوں. صرف گوہی راج نہیں سناتا ہوں, صرف گوہی راج بی کے میں سناتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, پھر گوہی تے بھی گوہی ایڈوانس میں سناتا ہوں. تو وہ گوہی گیان سنانے والا پرم پتا پرماتما سرشٹی پر آ کر کے منشیا آتماؤں کے 84 جنموں کا اشارہ دے دیتا ہے کہ تم آتمائیں अपने अपने 84 जन्मों में क्या क्या पार्ट बजावे भी वो तुमको पता पहले चलेगा, दूसरे किसी को पता नहीं चलेगा। तो ज्ञान की गहराई में जो जितना घुसता जाएगा वो पहचानता जाएगा मेरी आत्मा ने 84 के चक्र में क्या क्या कब कब कहां कहां किस देश में कैसा पार्ट बजाया, उसी को पता चलेगा, सबको पता नहीं चलेगा। अपनी आत्मा का पार्ट अपने को पहले पता चलेगा या दूसरे को पता चलेगा? अपने को ही पता चलेगा। हाँ जी,
भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को सब ज्ञान दिया था।
हैं?
भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को सब ज्ञान दिया था।
पहली बात आप गड़बड़ कर गए, भगवान कृष्ण है ही नहीं। अभी अभी आपको बताया भगवान आएगा तो क्या कलयुग पापी युग की स्थापना करके जाएगा?
महाभारत को लिखा हुआ तो
लिखा किसने? भगवान ने ऊपर से लिखा, वो टपक पड़ा नीचे, या मनुष्य गुरुओं ने लिखा? किसने लिखा? मनुष्य गुरु। मनुष्य गुरु मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी देवता होते हैं? कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी विकारी देवता होते हैं। तो जिनकी बुद्धि विकारी है, जो गुमूत से पैदा होते हैं, वो शास्त्रों में गुमूत भर देंगे कि नहीं भर देंगे? वही गुमूत की बातें भर देंगे। इसलिए वो बातें खत्म करिए, एक बार में एक बात को समझ लीजिए, अभी टाइम ही नहीं रहा ज्यादा गहराई से बार बार समझने का, सन गुजराने से नहीं चलेगा। अभी अभी आपने सुन लिया गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो पक्का कर दीजिए, आपके पास टाइम ही ज्यादा नहीं है। 70-71 साल हो गए भगवान की सृष्टि पर आए समझाते समझाते। हाँ,
अमरनाथ,
हाँ
अमरनाथ कहते हैं ये सब आत्मा सर्व छोड़ेंगे, वो देखेंगे, वो सर्व छोड़ेंगे, कोई देखेंगे
क्या?
कोई आत्मा नहीं देखेंगे,
वो कह रहे हैं।
हाँ,
जिसको अमरनाथ
संगम पर होगा
वो कह रहे हैं, जब जब विनाश होगा सारा दुनिया शरीर छोड़ेगा।
हाँ,
शिव बाबा देखेगा, शंकर सबको देखेंगे, लेकिन
जब दुनिया का विनाश होगा तो शिव बाबा देखेगा,
शंकर सबको देखेंगे शरीर छोड़ने के लिए,
ठीक है,
लेकिन वो जब शरीर छोड़ेंगे तो हाँ, कोई नहीं देखेगा।
इसीलिए तो उसका बाप कोई नहीं जानता कि उसका बाप कौन है, उसको अमर कहते हैं, वो मरता ही नहीं। दुनिया उसको अमरनाथ क्यों कहती है? उसको मरते हुए कोई ने देखा ही नहीं। जब शक्ति का विनाश हुआ तो सबको मरते हुए उसने देखा, शरीर छोड़ते हुए देखा, लेकिन उसको शरीर छोड़ते हुए कोई ने देखा ही नहीं। इसीलिए तो वो अमरनाथ है, संगम पर ही होगा, और क्या, सत्युग में होता है। हाँ, सत्युग में विनाश होता है नहीं होता है?
हाँ, आहार निद्रा मैथुन ऊपर कैसे?
आत्मा बन जाओ, देह खाती है, देह होगी, आत्मा देह धारण करेगी तब खाएगी, नींद करेगी, मैथुन करेगी कि बिना देह के आत्मा मैथुन करेगी? हैं? क्या करेंगे फिर आप? हैं? स्टार को याद करो, मैं आत्मा स्टार हूं, ये देह तो विनाशी है, इसको याद नहीं करना। विनाशी चीज को याद करेंगे तो बुद्धि विनाशी बनेगी। हम मनबुद्धि रूपी आत्मा हैं, ये पक्का करो। जब ये पक्का हो जाएगा, 24 घंटे आत्मिक स्मृति रहेगी तो भोजन की भी दरकार नहीं रहेगी, थकान भी नहीं होगी, जो आपको निद्रा की जरूरत हो। अब मैथन वैथन ये तो गुमूत दिखाई पड़ेगा, ससरे रमण रखड़े पड़े। हाँ,
अज्ञानी भाई ने पूछा, सत्य युग बाद में तो द्वापर होना चाहिए, तो त्रेता नाम दिया थे।
त्रेता में 13 जन्म होते हैं, इसलिए उसको नाम दिया है त्रेता युग, और सतयुग में जो 8 सच्ची आत्माएं हैं उन आत्माओं का राज्य चलता है, इसलिए उसको सत्य युग कहते हैं। अष्टदेव हैं जो सजाएं नहीं खाते, जरूर सच्चे हैं तब सजाएं नहीं खाते, باقی ساری دنیا میں ہر منشیہ آتما جھوٹا کاری کرتی ہے, جھوٹے لینا, جھوٹے دینا, جھوٹے بوجن, جھوٹ چبینا. راون کے پورے پربھاؤ میں جنم جنمانتر آتے رہتے ہیں, اس لیے جھوٹا کاری کرتے ہیں. اس لیے ستیوگ کو ست یوگ کہتے ہیں. اس یوگ کی استھاپنا ان آٹھ سچوں کے سہیوگ سے پرم پتا پرماتما کرتے ہیں. ان آٹھ کی مالا کو شنکر کے سر کے اوپر رکھا جاتا ہے. وہ شیو شنکر بھولے ناتھ ان بچوں کا بھی احسان مانتا ہے, اس لیے ان کو سر کے اوپر براجمان کرتا ہے. کیا احسان ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ بھگوان بھی احسان مند بنتا ہے ان بچوں کے, کیونکہ سچے ہیں. ان کے سہیوگ سے سچ کھنڈ استھاپن ہوتا ہے. بھگوان آ کر کے ستیہ یوگ استھاپن کرتا ہے. دو کلا کم تریتا کی استھاپنا نہیں کرتا. اور
جب آئیں گے تب اور سب وارتالاپ ہوتا ہے بابا سے, تو کوشچن وغیرہ پوچھتا ہے.
वैष्णवी देवी जब आएगी तो जो विष्णु देवता का स्वरूप है वैष्णवी देवी, वो नारकीय संगठन वालों के बीच में आवेगी या स्वर्गीय संगठन वालों के बीच में आवेगी? विष्णु स्वर्ग में होता है या नरक में होता है? कहाँ होता है? तो फिर माने वो जिस संगठन में आवेगी, जो ब्राह्मणों का संगठन पहली पारिवारिक इकाई होगी सतयुग की, उस पारिवारिक इकाई में स्वस्थिति में रहने वाली आत्माएं होंगी. उन स्वस्थिति में रहने वाली आत्माओं के बीच में ही विष्णु होगा. उसका नाम ही है विष्णु. नो विषय काल, विषय विकार का नाम निशान नहीं. और है
बॉडी माँ, बॉडी माँ पहले यज्ञ के शुरुआत में बाप उनके साथ संबंध जुड़ते हैं.
यज्ञ के शुरुआत में बड़ी माँ,
बॉडी माँ के साथ बाप संबंध जुड़ते हैं. फिर जब जब यज्ञ खत्म होता है, जो संगम होता है उसी टाइम में संगम स्वर्ग, उसी में फिर लक्ष्मी के साथ संबंध जुड़ते हैं. मुरली में बोला 1968 मुरली में बोला बाप एक के साथ ही संबंध जुड़ते हैं.
कौन से बाप की बात कर रहे हैं आप, जो एक के ही साथ संबंध जोड़ता है? बाप दो हैं बेहद के. देहधारियों का बाप, लौकिक देहों का बाप अलग, और आत्माओं के बाप अलग, और सारी मनुष्य शक्ति की जो आत्माएं हैं उनका बाप अलग. आप कौन से बाप की बात कर रहे हैं?
बोला है बाप.
हाँ बाप तो, लेकिन कौन से बाप की बात कर रहे हैं? एक है सारी मनुष्य शक्ति का बाप, जो सारी मनुष्य शक्ति हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसे बाप मानते हैं. एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव. हाँ
निराकार बाप के बारे में बोल रहे हैं.
निराकार बाप के बारे में बोल रहे हैं. हाँ निराकार बाप के बारे में बोल रहे हैं.
साकार में निराकार,
साकार में जो आता है वो निराकार एक ही है ना. जिस साकार में आता है वो भी तो सदैव निराकार नहीं है, थोड़े समय के लिए ही तो निराकार बनता है. तो आप निराकार के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ बताओ क्या बात कर रहे हैं.
मूल में तो ऐसे बोला है बाप 1968 जुलाई 18 तारीख 20 तारीख 2 तारीख में क्लैरिफिकेशन दिया है.
अरे तारीखें छोड़ो. हाँ
बोला है. हाँ बाप एक आकर के एक के साथ संबंध जोड़ते हैं.
बाप आकर के एक के साथ संबंध जोड़ते हैं. वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है. जिस मुकर्रर रथ में आकर के, मुकर्रर शरीर में आकर के सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करके उसको मां बनाते हैं, ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, जो मनुष्य गुरुओं ने भी गीता में लिखा है अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो वो सुप्रीम सोल बाप किसमें प्रवेश करके ज्ञान का बीज बोता है? प्रजापिता में, आदम में, एडम में, हिंदुओं में जिसे आदिदेव शंकर कहा जाता है, जैनियों में जिसे आदिनाथ कहा जाता है, जिसकी विग्रह मूर्तियां नग्न मूर्तियां सारे संसार में मिली हैं, उससे ज्यादा मूर्तियां किसी देवता की नहीं मिली, उस एक के साथ ही सारे संबंध जोड़ता है पहले, वो सुप्रीम सोल, वो मुकर्रर रथ है। और बच्चों में भी प्रवेश करता है, जो रुद्रमाला कही जाती है, रुद्राक्ष के मण के प्रसिद्ध हैं यादगार में, उन रुद्राक्ष के मणकों में भी मुख बने होते हैं, उन मणकों में एक मुख वाला एक ही होता है और बाकी सब अनेक मुखों वाले होते हैं, माने उन अनेक मुख वालों में शिव भी प्रवेश करता है और दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भी प्रवेश करके अपना पार्ट बजा लेती हैं। लेकिन एक मण का ऐसा है जिसमें सिर्फ एक शिव ही प्रवेश करता है और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वही तो संबंध है, अम्मा में बाप प्रवेश करता है तो संबंध जुड़ा कि नहीं इंद्रियों से? अरे
तो
पहला संबंध तो माँ बाप का होता है ना,
तो हुआ वो तो पहला संबंध तो हुआ,
हुआ हो गया
आखिर में जो जब
तो जो आदि सुअंत
संगम युगी स्वर्ग जब होता है,
जब संगम युगी स्वर्ग होता है तब भी इस सृष्टि पर आकर के महाकाली का जब तक पार्ट संपन्न नहीं होगा तब तक 500 करोड़ की जो साकार सृष्टि है वो खलास नहीं हो सकती।
महाकाली अंत में आकर के
उसको भी अंत में पार्ट बजाना है, वो अलग नहीं है, वो महालक्ष्मी भी अंती है, लक्ष्मी भी है तो महालक्ष्मी भी है। हाँ इतना अंतर है कि जो महालक्ष्मी का पार्ट है जगदम्बा का, वो जगदम्बा संपूर्ण 100% लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती, वो नारी से जगदम्बा बनती है, लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं बनती। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। और
में जब विनाश होगा त्रेता के अंत में, जब विनाश होगा त्रेता के अंत में जब विनाश होगा त्रेता के अंत में
अर्ध विनाश,
तो उस टाइम जो भी आत्माएं होंगे उनका जो स्मृति है, जो स्मृति है जो स्वर्ग में थे उसका स्मृति रहेगा ना चला जाएगा?
दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, फट जाए, हॉस्पिटल में पड़ा रहे, उसकी स्मृति चली जाती है। बड़ा एक्सीडेंट होता है तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, वो तो सामान्य एक्सीडेंट है। और दुनिया का आधा विनाश हो जाएगा, उस समय तो दुनिया में 10 करोड़ मनुष्य आत्माएं होती हैं देवात्माओं के रूप में, और उस समय वो देह की स्मृति में आ जाती है अचानक, देह के संबंध है और पतन के संबंध में आ जाती है, तो एकदम विस्फोट होता है, उसमें आधे ही रह जाते हैं, बाकी सबको शरीर छोड़ना पड़ता है अचानक। तो भूत प्रेत बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो भूत प्रेतों की दुनिया ही शुरू हो गई। तो जब आधा विनाश हो गया दुनिया का, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो विस्मृति नहीं होगी? अरे जो बचते हैं उनको कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा? उनको नुकसान नहीं होगा, उनको चोट चपेट बिल्कुल नहीं लगेगी। अरे बड़ा भूकंप आया है तो कोई बच जाएगा क्या उसमें? कोई नहीं बचता है, सबकी स्मृति खलास। जिस व्यास के बारे में गायन है वो व्यास की भी स्मृति खलास हो जाती है, उसको कुछ भी स्मृति नहीं रहती कि देवताओं का युग सत्युग त्रेता था।
हाँ सतयुग त्रेता में आत्मा को ये स्मृति रहता है हम सतयुग में है या त्रेता में है?
कोई ज्ञान की स्मृति नहीं, तीन कालों का कोई ज्ञान नहीं रहता, बस मैं आत्मा हूँ, ज्योतिबिंदु हूँ, स्टार हूँ। उसी स्मृति में सुख भोगते रहो, आत्मिक सुख।
जब त्रेता लास्ट अंत होता है तब वो आत्मिक स्मृति खत्म हो जाती
है, आत्मिक स्मृति खत्म हो जाती है, देह के सुख शुरू हो जाते हैं, आत्मिक स्मृति खलास, तो आत्मा का सुख भी खलास। देह की स्मृति शुरू तो देह के सुख शुरू, अल्पकाल के। देवताएं तो 24 घंटे आनंद में रहते हैं, उनकी रात ही नहीं होती जो सोने की जरूरत पड़े, थक जाएं। और
बाबा तिरुमूर्ति शिवलिंग,
हाँ पूरी बात बोलो,
इसका अर्थ क्या
है?
इसका अर्थ क्या है?
किसका? त्रिमूर्ति
शिव जयंती,
त्रिमूर्ति शिव जयंती, माने तीन मूर्तियों की कल्याणकारी जन्म दिवस संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे की जन्म लेने वाली जो मूर्ति है वो सारे संसार को माननी पड़ती है कि इस घर में, इस कुल में, इस गांव में, इस जनपद में इस बच्चे ने जन्म लिया, ये मूर्ति आई। ऐसे ही सारे संसार में हर मनुष्य मात्र को ये मानना पड़े कि भगवान शिव निराकार की तीन साकार मूर्तियां भारत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले चुके, जिनकी यादगार आज भी झंडे के रूप में कायम है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे क्या कपड़े का झंडा, तीन कपड़े कहीं विजय विश्व करते हैं? कपड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को कहा जाता है। ये शरीर रूपी तीन प्रकार का पार्ट बजाने वाले कपड़े हैं, एक है क्रांतिकारी पार्ट बजाने वाला लाल, एक है सफेद कपड़ा विष्णु सत्वप्रधान, एक है हरा कपड़ा गायन है, श्रावण के अंधे को हरा ही हरा सूझता है ब्रह्मा। जिंदगी में स्वर्ग ही स्वर्ग चिल्लाते रहे, राम राज्य गांधी जी की तरह। गांधी जी क्या चिल्लाते रहे? स्वतंत्रता लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य। क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। फिर वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो वही शीतल पार्ट बजाने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब शंकर के मस्तक पर सुशोभित होता है, शंकर वाली आत्मा समझ लेती है कि यही आत्मा सत्युग में मेरा पहला बच्चा, पहला पत्ता सृष्टि का बनने वाली है, तो उस बच्चे को सर माथे पर धारण करती है और उस बच्चे का नाम रोशन करने के लिए बाप अपनी सारी ताकत लगाता है। हर एक बाप अपने बच्चे का नाम बाला करना चाहते हैं, बाप का काम है बच्चे को आप समान बनाना। तो आप समान बनाने के लिए जब सारी ताकत लगाई जाएगी तो बनेगा या नहीं बनेगा? वो ब्रह्मा बच्चा जिसकी संसार में पूजा नहीं होती, जिसके बच्चों ने उसका नाम रोशन करने के बजाय मिट्टी में मिला दिया, उसी ब्रह्मा को जिसने अपने बच्चों का जीवन भर सहन किया, कभी उनको तुरस आंख से नहीं देखा, एक भी बच्चा नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को भगवान बाप शंकर के द्वारा आप समान जब तक नहीं बना लेता तब तक जिंदगी में चैन नहीं। तो दोनों आत्माएं समान हो जाती है, जैसे राम वाली आत्मा नरसे नारायण बनती है, वैसे कृष्ण वाली आत्मा भी ब्रह्मा सत्युग में नारायण सोलह कला संपूर्ण बनती है। तो दोनों समान हो गई, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है स्वभाव संस्कार का वो विष्णु कहा जाता है। इसलिए तीन मूर्तियां गायी हुई हैं, वो तीनों मूर्तियां अभी संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। एक है ब्रह्मा माने बड़ी मां माने जगदम्बा। बड़ी माने कौन? बड़ी मां सारे जगत की अम्बा, देवताओं की अम्बा नहीं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अम्बा नहीं, किसकी अम्बा? इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन सब धर्म वाले आकर के दिल्ली की गोद में राज करेंगे, ऐसी अम्बा जिसके लिए बोला है वाणी में, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली के ऊपर सारे भारत का मदार है। इसलिए कहते हैं कि घर की धरित्री, घर की धरणी, घर को संभालने वाली गृहिणी अगर अच्छी हो तो घर क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए। तो जगत पिता के लिए जगदम्बा क्या है?